आज हम सब श्रीमद् भागवतम स्कंद 8 का अध्याय 16 का श्लोक संख्या 61 पर चर्चा करेंगे। एव नियमा साक्षात् त एव च एवोत्तमः तपोदानं व्रतं यज्ञ येन तुष्यति दोक्षजः त एव नियमा साक्षात् त एव च एवोत्तमः तपोदानं व्रतं यज्ञ येन तुष्यति दोक्षजः स एव नियमः साक्षात् स एव च यमोत्तमः तपोदानं व्रतं यज्ञ येन तुष्यति दोक्षजः स एव नियमः साक्षात् स एव च यमोत्तमः तपोदानं व्रतं यज्ञो येन तुष्यति दोक्षजः। स एव नियमः साक्षात् स एव च यतोत्तमः तपोदानं व्रतं यज्ञ एम तुष्यति दोक्षजः। सततोत्तमः तपोदानं व्रतं यज्ञो येन तुष्यति दोक्षजः निवासाक्षात् एव च यदोत्तमः तपोदानं व्रतं यज्ञ येन तुष्यति दोक्षजः स एव नियमः साक्षात् स एव च यमोत्तमः तपोदानं व्रतं यज्ञ येन तुष्यति दोक्षजः स एव नियमः साक्षात् स एव च यमोत्तमः तपोदानं व्रतं यज्ञ येन तुष्यति दोक्षजः स एव नियमः साक्षात् स एव च यतोत्तमः तपोदानं व्रतं यज्ञो येन तुष्यति दोक्षजः। माताजि सागरेतोत्तमः तपोदानं व्रतं यज्ञो माताजी लोग ते वे एव निसंदेह नियमा सारे विधि विचार साक्षात प्रत्यक्ष ते वे एव निसंदेह च भी यम उत्तमा इंद्रियों को बस में करने की सर्वश्रेष्ठ विधि तपः तपस्या दानम दान व्रतम व्रत यज्ञ यज्ञ एना जिस विधि से तुष्यति प्रसन्न होता है अधोक्षज भौतिक इंद्रियों से अनुभव न हो सकने वाले भगवान अनुवाद और तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा अधोक्षज कहलाने वाले दिव्य भगवान को प्रसन्न करने की यह सर्वोत्तम विधि है। यह समस्त विधि विधानों से श्रेष्ठ है। यह सर्वश्रेष्ठ तपस्या है। दान देने की और यज्ञ की सर्वश्रेष्ठ विधि है। तात्पर्य भागवत गीता में भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं तं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे धर्मों को त्याग दो और मात्र मेरी शरण में आ जाओ, मैं सारे पाप फलों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। तुम डरो मत। जब तक भगवान की इच्छा अनुसार उन्हें प्रसन्न नहीं किया कर लिया जाता तब तक मनुष्य को अपने कर्मों से कुछ भी शुभ फल प्राप्त नहीं होगा। धर्म स्वनिष्ठित पुंसान विश्व शक्ति कथा से नत्यात्पदे यदि रति रति मुश्रम एव ही केवलम। अपने पद के अनुसार किए गए मनुष्य के सारे वृत्ति कारक कार्य व्यर्थ में श्रम है। यदि वे भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण न उत्पन्न कर सके, भागवत 1:2:8 के यदि किसी को भगवान विष्णु अथवा वासुदेव को तुष्ट करने में रुचि नहीं है तो उसके सारे तथा कथित पुण्य कर्म व्यर्थ हैं। मोघासा मोह कर्मणो मोह ज्ञाना विचेतसः। मोहग्रस्त होने के कारण वो अपनी आशाओं अपने कार्यों तथा अपने ज्ञान में संभ्रांत रहता है। इस संबंध में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती की टिप्पणी है नपुंसकम अनपुंसकम नित्याधिकत्वम पुंसत्वम तथा नपुंसक की बराबरी नहीं की जा सकती। आधुनिक मायावादियों में यह कहने का फैशन बन चुका है कि मनुष्य जो कुछ करता है या जिस किसी मार्ग का अनुसरण करता है वह सब सही है, किंतु ये मूर्खतापूर्ण कथन है। यहाँ पर इस बात में बलपूर्वक पुष्टि की गई है कि जीवन में सफलता की एकमात्र उपाय है ईश्वर तर्पण बिना सर्वमेव विफलम। जब तक भगवान विष्णु प्रसन्न नहीं होते हैं तब तक मनुष्य के सारे पुण्य कर्म अनुष्ठान तथा यज्ञ मात्र दिखावा है और उनका कोई मूल्य नहीं होता है। दुर्भाग्यवश मूर्ख लोग सफलता के रहस्य को नहीं जानते। न ते विदुः स्वार्थ गतिम ही विष्णुम। वे यह नहीं जानते कि असली स्वार्थ की परिणति भगवान विष्णु की प्रसन्न करने में है। 62 वाला श्लोक भी इसमें परपड़ नहीं है। तस्माद् देवव्रतम भद्रे प्रयता सद्र आचर भगवान पर तुष्टते वर्णा सुविधाय सति। अतः हे भद्रे तुम विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हुए इस अनुष्ठान व्रत का संपन्न करो। इस विधि से परम पुरुष तुम पर शीघ्र ही प्रसन्न होंगे और तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा करेंगे। इस प्रकार से भागवत के 8वें स्कंद के अंतर्गत पयोव्रत पूजा की विधि पालन करना नामक 16वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्वा नरं च नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरेत नष्ट प्राय स भद्रेशु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो इस श्लोक में यह बताया गया है कि पयोद विधि का तप कैसे किया जाता है। कश्यप ने अपनी पत्नी को बताना चाहते हैं भयो व्रत सावधानी से कीजिए ताकि आपके पुत्रों को फिर से वापस राज्य प्राप्त हो जाए। अदिति माता बहुत दुखी थी क्योंकि बलि महाराज ने इंद्रासन पर चढ़ाई करके इंद्रासन पर कब्जा कर लिया। तब ये अपने गुरु के पास गए देवता लोग। गुरु जी ने कहा कि इस समय आप लोग वहां से दूर हट जाइए, अज्ञात जगह पे चले जाइए, क्योंकि उनके अनुकूल इस समय गुरु भी है और ब्राह्मण भी है, तो इस समय आप लोग कुछ कर नहीं सकते, इसलिए दूर हट जाइए। तो जब अदिति माता ने देखा कि हमारे बच्चों का राज्य छीन लिया गया है तो बहुत दुखी हुई और कश्यप मुनि से उन्होंने कहा, प्रभु मेरा बच्चों का राज्य छीन लिया गया इसलिए मैं बहुत दुखी हूं। तो कश्यप जी बहुत दिन के तपस्या के बाद आए थे तो देखे कि कुटिया पे सारा अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा था, तो समझ गए कि या तो कोई ब्राह्मण भूखा चला गया होगा, कोई अतिथि आया उसको सत्कार नहीं हुआ है, या किसी कारण से ये शोक क्यों दिखाई दे रहा है। तो अदिति से कश्यप जी पूछ रहे हैं ये आश्रम की हालत क्या है। तब उन्होंने अपने सारे दर्द को सुनाया तो कश्यप जी समझ गए कि ये आध्यात्मिकता का प्रश्न नहीं कर रही है, ये भौतिकता की कर रही है, गृहमेदी का प्रश्न कर रही है। इनको अपने बच्चों के ऊपर ये कि हमारे बच्चों का राज्य छीन लिया गया, तो उनको उन्होंने कहा कि इसके लिए केवल भगवान नारायण को खुश करना चाहिए और पयो व्रत का पालन करना चाहिए। आप पयो व्रत करेंगे तो फिर से आपके बच्चों का जो राज्य गया है वापस आ जाएगा। तो पयो व्रत बहुत कठिन है और 12 दिन का पयो व्रत बताया कश्यप जी ने। यही महीना फरवरी मार्च का शुक्ल पक्ष में, फरवरी मार्च के शुक्ल पक्ष के 12 दिन किए जाते हैं, या फाल्गुन मास का शुक्ल पक्ष। तो प्रभुपाद जी ने यहां फरवरी और मार्च के शुक्ल पक्ष को वर्णित किया क्योंकि सब लोग जनवरी फरवरी महीना ही जानते हैं, फाल्गुन मास चैत मास ये सब नहीं जानते हैं, इसलिए उन्होंने उल्लेख किया है कि फरवरी और मार्च का शुक्ल पक्ष में ये व्रत किया जाता है। तो अदिति ने ये व्रत किया और ये पयो व्रत जो है दूध के ऊपर किया जाता है और कुछ अन्न वगैरह नहीं ले सकते हैं, 12 दिन तक दूध पे रहते हैं। 12 दिन का व्रत इन्होंने किया तो फिर इनके बच्चे विजयी हो गए और बलि की सेनाओं के साथ मार दिया गया। फिर शुक्राचार्य ने जाकर के उनको अपने योग विद्या के द्वारा फिर से जिंदा किया। फिर बलि महाराज विश्वजीत यज्ञ किया, विश्वजीत यज्ञ से उन्होंने फिर से देवताओं के ऊपर चढ़ाई किया। तो इस प्रकार से फिर से उन्होंने विजय प्राप्त किया। फिर देवता लोग भगवान के पास गए, प्रभु हम लोग क्या करें, अभी बार बार हमको हरा करके हमारा राज्य छीन लिया जा रहा है, हम लोगों के पास कोई उपाय नहीं है, ना हमारी शक्ति है कि उसके साथ लड़ाई कर सके। राजा बड़े बलवान भी थे और तप के द्वारा सिद्धि भी प्राप्त कर लिए थे। फिर उन्होंने 100 अश्वमेघ यज्ञ शुरू करवाया शुक्राचार्य जी ने। तब देवता लोग और घबरा गए कि अब ये यज्ञ पूरा होने के बाद तो तीनों लोक में इसका राज्य ही रहेगा, देवताओं का कहीं ठिकाना ही नहीं रहेगा। तो भगवान के पास गए, भगवान ने कहा कि ये तो संकटमय बात है आप लोगों के लिए। तो भगवान वामन रूप अवतार ग्रहण किए, वामन रूप पकड़ के भगवान उसका यज्ञ भंग करने के लिए उनके बलि के द्वार पर पहुंचे। राजा बलि उस समय यज्ञ पर बैठा था, तो शुक्राचार्य समझ गए कि भगवान विष्णु फिर से आ गया है और गेट पर पहुंच गया है, अब हमारा यज्ञ को भंग करना चाहता है। तो द्वारपाल ने आके बोला कि कोई ब्राह्मण भिखारी आया हुआ है और भगवा वस्त्र में है और ब्रह्मचारी है, वो राजा बलि से मिलना चाहता है और याचक के रूप में आया है। तो याचक शब्द सुनकर राजा बलि तुरंत अपने आसन से उठने लगे। शुक्राचार्य उनको पकड़ के बैठा रहे थे कि हमारा यज्ञ पूरा होने जा रहा है, अंतिम आहुति है, आहुति दे लो। लेकिन वो बहुत बड़े दानी होने के नाते तीनों लोक में उनका दान में नाम था, इसे राजा बलि अपने आप को रोक नहीं सके। उन्होंने कहा, देखिए इस समय मैं रुक नहीं सकता हूं, क्योंकि जो मेरा कर्तव्य है दान देने का, उससे मैं च्युत हो जाऊंगा तो मेरा तीनों लोक में अभ्यास फैल जाएगा। शुक्राचार्य कहे, नहीं नहीं, वो कोई दान लेने नहीं आया, वो विष्णु है जो हमेशा से राक्षसों का अनहित करने वाला है। एक बार जब ये अमृत निकला था तो मोहिनी रूप बना करके उसने आकर के तुम लोगों को अमृत नहीं दे करके देवताओं को पिला दिया, इसलिए इस पर विश्वास करने की कोई बात नहीं है और मत विश्वास करो, और ये बार बार आकर के छल करता है, इसलिए नहीं जाना चाहिए। तो शुक्राचार्य के बहुत आग्रह पर भी बलि महाराज कहे, नहीं, मैं दानियों में नाम मेरा है, दान देने के लिए मैं विमुख नहीं हो सकता हूं, मैं अवश्य जाऊंगा। मेरा यज्ञ भले भंग हो जाए लेकिन मैं अपना कर्म नहीं छोड़ सकता हूं। तो बोले, वो दानी दान लेने आया है तुमसे, तो दानी बन के जा रहा है, तो दान भी नहीं दे पाएगा और तुम्हारा अपयश भी हो जाएगा और तुमको स्वर्ग भी नहीं मिलेगा, नर्क भी नहीं मिलेगा, नर्क से भी खराब है, नर्क में भी स्थान नहीं तुमको मिले, क्योंकि तुम एक गुरु की बात नहीं मान रहे हो। तुम्हारा गुरु होकर के मैं कह रहा हूं कि यज्ञ पूरा हो गया है, अंतिम आहुति दे करके फिर जाओ। लेकिन राजा बलि ने कहा कि भगवान आए हैं, अगर भिक्षुक के रूप में आए हैं तो भी मेरे इसमें कुछ हित ही होगा। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए जब कार्य किया जाता है तो उसमें विजय होती है। तो राजा बलि चल पड़े, उनके पीछे पीछे शुक्राचार्य दौड़ रहे हैं। जब दरवाजे पे आए तो वहां देखे भगवान वामन देव खड़े हैं छतरी लेके, जाके वामन देव को प्रणाम किया। ब्राह्मण देव, मेरे से क्या अपेक्षा रखते हैं आप? तो भगवान ने कहा कि मैं तो भिक्षुक ब्राह्मण हूं, धन संचय करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है ब्राह्मणों को, मैं आया हूं आपसे तीन पग जमीन चाहता हूं। राजा बलि इतना बड़ा राजा है और दानी है, उसके पास जाकर तीन पग जमीन मांगने से बहुत जोर से हंसा। उसने कहा ब्राह्मण देव, कुछ सोच समझ के मांगिए और किसके पास आए मेरे पास बारे में न जानते हो तो आपको पता लगाना चाहिए। मेरा महादानियों में नाम है, मेरे जैसा बड़ा दानी कोई है नहीं, और उसके पास आकर के तीन पग जमीन मांग रहे हैं, वो भी आपका पग बहुत छोटा है। इस छोटे पग से मैं कहां पे आपको तीन पग जमीन दूं? और ये मेरा मजाक उड़ाने, हंसी उड़ाने के लिए आए हैं। मैं तो ये चाहता हूं ब्राह्मण देव कि आपको और जिंदगी में भिक्षा मांगने की आवश्यकता न हो, ऐसा कुछ मांगिए। भगवान ने कहा नहीं नहीं, तुम मुझे लालच मत दो, ब्राह्मण का संचय करने का, धन संचय करने का कर्म नहीं है, वो केवल भिक्षा ही चाहिए उनको, और भिक्षा मांगने आया हो भिक्षा दीजिए मुझे। तो शुक्राचार्य कह रहे हैं कि देख रहे हो कितना नकलची है, ये भिक्षा मांग रहा है, यही विष्णु है, और जो हमेशा अनहित करते आया है राक्षसों का, आज भी अनहित करने के लिए आया है, यज्ञ पूरा नहीं होने दिया, आकर के तुमसे भिक्षा मांग रहा है, तुम इसको भिक्षा दे सकोगे? सब कुछ तो इसका है, इसमें से तुम क्या इसको दोगे? और जो छोटा छोटा पैर देख रहे हो ना, तो छोटा पैर नहीं है इसका, ये माया भी है। जब अपना पैर को बढ़ाएगा ना, तुम कुछ नहीं दे पाओगे, तेरा सब कुछ माप लेगा, और तुम्हें नरक में भी जगह नहीं छोड़ेगा। तो बलि राजा ने कहा गुरुदेव, अगर मुझे छलने भी आए हैं, स्वयं विष्णु आए हैं ना, इसमें मुझे अभिमान है, मेरे द्वार पर स्वयं विष्णु भिक्षुक रूप में आए हैं, इसमें कोई हमारी हानि नहीं है। शुक्राचार्य बोलते मेरी बात नहीं मानोगे? तो राजा बलि बहुत भक्त भी थे, वो समझ गए कि गुरु जी नाराज हो रहे हैं, और ये जानते थे कि अगर भगवत प्राप्ति हो, भगवान का दर्शन हो, भगवान स्वयं आए, तो अगर गुरु विरुद्ध भी हो जाए तो भगवान को नहीं छोड़ना चाहिए, भगवान को पकड़ना चाहिए। तो उसने कहा गुरुदेव कोई बात नहीं है, मैं इनको दान दूंगा। शुक्राचार्य कहते नहीं दे पाएगा, मैं दूंगा, नहीं दे पाएगा, तीन बार बोले, फिर दे के देख लो, देखो तुम खुश कर पाते इसको। तो बलि राजा ने कहा ब्राह्मण देव, मुझे बड़ी शर्म आ रही है कि आप तीन पग जमीन मांग रहे हैं मुझसे, और मैं कहां पर दू, कहां पर आप चाहते हैं वहां से आप तीन पग ले लीजिए। तो भगवान जान रहे थे कि शुक्राचार्य बहुत चलाक है, अगर मैं वरवली बात में आकर के इससे दान लूंगा तो रोक सकता है बीच में। तो भगवान ने कहा देखो, मैं जानता हूं आप विरोचन के पुत्र हो और प्रहलाद महाराज के पौत्र हो, और आप बहुत दानी और वीर हो, लेकिन बिना संकल्प किए मैं दान नहीं लूंगा, संकल्प करिए। तो भगवान के कहने पर बलि जी ने अपने हाथ पे कुश लिया, और जब सुराही से पानी डालने लगे संकल्प लेने के लिए, तो शुक्राचार्य सुराही में घुस गए। पानी नहीं गिरा तो संकल्प नहीं हो पा रहा था, तो भगवान ने सोचा ही क्या है, पानी क्यों नहीं गिर रहा है, तो वही कुश उठा के उस सुराही के मुंह में डाल दिए, तो शुक्राचार्य का एक आंख फूट गया। तो जब बाहर निकल गए तो पानी गिरा और संकल्प लिए भगवान। उस समय बलि राजा की लड़की देख रही थी वामन भगवान को और देख करके बहुत लुब्ध हो गई, कितना सुंदर बालक है। तो अपने मन में ही संकल्प किया उसने कि काश जब मेरा बेटा होता। तो भगवान समझ गए कि इसको लग रहा है कि मैं इसका बेटा बनूं। तो भगवान ने अंदर अंदर स्वीकार कर लिया, ठीक है तेरा बेटा भी बनूंगा। लेकिन जब दान लेने लगे तो भगवान ने दो ही पग में सब नाप लिया, तीसरा पग रखने के लिए जगह ही नहीं बचा। तो शुक्राचार्य कर आप दे, तू तो बड़ा दानी था ना, तीसरा पैर रखने के लिए भी जगह दे दे। अब भगवान भी कोसने लगे, अरे भाई तू तो अब तक बहुत बड़ा दानी बन रहा था, मैं दान दूंगा ये करूंगा, अब कहां रखूं, तो तेरा तो दो ही पग में कुछ रह नहीं गया, अब कहां हम तीसरा पैर रखूं, तुम तो बोलता था छोटा छोटा पैर है, हम कहां दूं, हमारी बेइज्जती होगी, अब बेइज्जती कहां गई तुम्हारी, अब कहां रखूं तीसरा पैर। राजा बलि तो बहुत होशियार भक्त था भगवान का। बलि ने कहा प्रभु दान से दानी का महत्व ज्यादा होता है, अभी मैंने दान दिया है लेकिन दानी शेष है, आप जो है तीसरा पैर मेरे सर पे रख दीजिए। तो जो तीसरा पैर भगवान सर पे रखे तो बलि को पातालपुरी भेज दिए और उन्होंने कहा कि तुम परीक्षा में पास हो गया, अभी पातालपुरी का राजा बना के भेज रहा हूं और वहां मैं दरबानी करूंगा। उस समय वो लड़की देख रही थी कि तब तक तो सोच रही थी काज मेरा बेटा होता, लेकिन वो क्रोध उसको आया कि मेरे पिता का ऐसी दशा कर दिया इसने, ये तो महाचंडाल आदमी है। तुमने कहा ऐसे बेटे को कालकूट जहर पिलाना चाहिए, भगवान ने वो भी स्वीकार कर लिया, ठीक है जहर भी पी लूंगा। तो वही पूतना बन के आई, भगवान को कालकूट जहर अस्तन में लगा करके पिलाया था, तो अस्तन पी के तो मां का दर्जा दिया भगवान ने, और जहर पी करके उसका उद्धार कर दिया। तो भगवान जो भी प्रतिज्ञा करते हैं किसी युग में भी करें, लेकिन किसी न किसी युग में उसको पूरा करते हैं, उनके पास कोई डायरी नहीं है, उनका स्पेशल दिमाग है, सब उनका लिखा रहता है, जैसे टाइम पर आता है उसको उद्धार कर देते हैं। तो उसका क्षीर भी उसका अस्तन पी करके मां का दर्जा दिए, कालकूट जहर पिलाने को बोले थे तो जहर भी पी लिया, फिर भी उसका उद्धार किया। तो भगवान कभी भी जीव का उद्धार ही करते हैं, भगवान किसी का अनहित नहीं चाहते हैं, भगवान के अंदर द्वेष भाव नहीं है। और जैसा जिस प्रकार का अवतार लेना होता है उन्हें किसी परमिशन की जरूरत नहीं होती है, अवतरित हो जाते हैं। भक्तों के कारण तो कहीं भी किसी भी प्रकार से नंगे पांव चले आते हैं, तो इस पयो व्रत का मतलब है कि भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जो व्रत किया जाता है जिससे भगवान खुश होते हैं उसका व्रत सफल होता है। भक्त वत्सल भगवान है भक्तों के लिए, कहीं भी किसी स्थिति में पहुंचते हैं। प्रहलाद महाराज भगवान के भक्त नारद ऋषि के द्वारा उन्हें भक्ति मिली थी और कयाधु के पेट में ही भक्ति प्राप्त कर लिया था। तो वो अंडेरी भक्त नहीं, प्रहलाद महाराज जो थे राक्षस कुल में थे, लेकिन भगवान की पूर्ण भक्ति प्राप्त करने के कारण उन्हें हर जगह भगवान दिखते थे। हर चीज में भगवान का दर्शन करते थे, जो प्रकृति है उसमें भी भगवान का दर्शन करते थे, क्योंकि प्रकृति की रचना भगवान ने स्वयं की है। तो जब पूर्ण ज्ञान हो जाता है तब हर चीज में भगवान दिखाई देते हैं। तो प्रहलाद महाराज को विष्णु भक्ति करने के लिए रोकने के लिए हिरण्यकश्यप ने बहुत उपाय लगाई। वो चाहता था कि मेरी भक्ति करें, मैं सबसे बलशाली हूं, लेकिन भगवान की महिमा को अज्ञानता से न जान करके वो अपने आप को भगवान कहता था। लेकिन प्रहलाद महाराज ज्ञान पूर्ण थे, वो ये जानते थे कि ये जीव है, अहंकार से बोल रहा है लेकिन भगवान नहीं है, इसलिए अटूट विश्वास से भगवान की भक्ति करते थे। तो नाना प्रकार का प्रहलाद महाराज को हिरण्यकश्यप ने कष्ट देना शुरू किया, तो मैं भगवान हूं, मेरे नाम का जप करो। लेकिन भक्त प्रहलाद कहते थे, मैं चाहता हूं पिताजी आप भी भगवान विष्णु का नाम लीजिए, श्रीहरि का नाम लीजिए। तो बोला, श्री लगाता है तुम भगवान मेरे दुश्मन को, मेरे को श्री लगाओ। लेकिन प्रहलाद महाराज कभी भी दिखते नहीं थे उनके गुस्सा से। और टीचर लगा दिए उनको कि भाई इसको समझाओ, इसकी बुद्धि ठीक करो, नहीं तो मुझे इसे मारना पड़ेगा। लेकिन टीचरों की बात को भी नहीं मानते थे प्रहलाद महाराज। वहां पर भी बच्चों को, जैसे आप लोग बैठे हैं तो वहां पर शिक्षा देते थे, भगवान कृष्ण की भक्ति करो, भक्ति ही सबसे उत्तम उपाय है, ये संसार में आए हो, कृष्ण नाम जपना चाहिए। तो मास्टर लोग उठते थे, बोलते अरे तुम यहाँ क्या प्रचार कर, हम लोग तुमको हिरण्यकश्यप की भक्ति करनी है कि बोले तुम तो विष्णु की भक्ति कर, हम लोग की नौकरी भी लेगा, हमें मृत्यु दंड दिला देगा तुम। बहुत समझाने लगे। भगवान ने कहा, प्रहलाद महाराज ने कहा कि आप लोग भी भगवान का नाम लीजिए, आपका कोई अनहित नहीं होगा। लेकिन उन लोग भौतिक धरातल पे थे, ये समझते थे हिरण्यकश्यप नाराज हो जाएगा तो मुझे मार देगा, मैं उसके राज्य में हूं। और भगवान की भक्ति उनके समझ में नहीं आती थी। और थे भी और राक्षस के पुत्र शुक्राचार्य के बेटे थे, तो उनको कहां से भक्ति आएगी। तो भगवान हिरण्यकश्यप ने कहा कि भाई जाके टीचरों को खबर दे दो कि उसमें क्या सुधार आया बच्चे में, वो लेके आए मेरे पास। तो भगवान के पास जब हिरण्यकश्यप भगवान के पास पहुंचे, हिरण्यकश्यप के पास जब प्रहलाद महाराज पहुंचे, उन्होंने कहा तुमने क्या सीखा अभी। तो नौदा भक्ति उन्होंने बता दिया, प्रणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। इस पर बहुत क्रोध हो गया उसको, तो बहुत क्रोध से टीचरों को भी बहुत गुस्सा किया, तुम लोग क्या सिखा रहे हो इनको। तमाम प्रकार का कष्ट देने के बाद एक बार प्रहलाद महाराज को खम्भे में बांध दिया। अब सोचा कि इसको मारने के सिवा और कोई उपाय नहीं है, अब ये सुधर नहीं सकता है, विष्णु का भक्त बनेगा, विष्णु मेरा दुश्मन है। बांध के अब तलवार लेकर के उनको डराने लगा। बोला, देखते हो मेरे हाथ में क्या है। प्रहलाद महाराज का तलवार है। बोला, मैं अब इससे तुम्हारा मृत्यु कर दूंगा। प्रहलाद महाराज ने कहा कि नहीं नहीं, आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके तलवार में भी भगवान है, आप में भी भगवान है, और तोला इस खंभे में भी है, तोला खंभे में भी है। तोला मेरे में तो नहीं है तुम्हारा भगवान, मेरी तलवार में भी नहीं, लेकिन ये खंभे में है क्या? तोले खंभे में है। तो भक्त वत्सल होने के नाते भगवान थे नहीं उस खंभे में, लेकिन भक्त की बात जाने नहीं दूंगा ऐसा उनका प्रण है भगवान का। भक्त वत्सल होने के नाते वो कभी भक्त का वचन खाली नहीं जाने देते, अपना खाली चला जाएगा चलेगा, लेकिन भक्त की वचन खाली नहीं जाना चाहिए। तो उसने तीन बार बोल के कहा कि अब मैं तुमको जान से मारने जा रहा हूं, बोला तेरा भगवान किधर है? तो बोला आपकी तलवार में भी है और खम्भे में भी है, हम में भी है, तुम्हें भी सब में है, हमें तुम्हें खड़खम में। जब उसने तलवार से प्रहार किया तो खम्भे से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। भक्तवत्सल नरसिंह भगवान है कि तो नरसिंह भगवान जब प्रकट हो गए तो उनके साथ कुश्ती हो गई। तो उसने जिस प्रकार से वरदान मांगा था कि जल में न थल में न ब्रह्मा की किसी सृष्टि के द्वारा, किसी जीव द्वारा, जानवर द्वारा, घर में न बाहर, तो वो भगवान ध्यान में देते हुए कि ब्रह्मा का दिया हुआ वरदान कहीं खंडित न हो जाए, तो बहुत देरी लगाया भगवान ने मारने में, क्योंकि ऐसा स्थान ढूंढ रहे थे कि कहां मारूं मैं उसको। देवता लोग तो वरदान दे देते हैं लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि असुर क्या करेगा फिर, और उसको भगवान को झेलना पड़ता है। तो भगवान के साथ जब लड़ाई चल रही थी तो उस समय आकाश मार्ग से सारे देवी देवता उस कुश्ती को देख रहे थे, और छुप के देख रहे थे कि हिरण्यकश्यप को न पता चल जाए कि हम देख रहे थे, नहीं तो अगर वो जीत जाएगा तो हम लोग का तो बुरा हालत कर देगा, इसलिए बादलों के बीच में छुप छुप के देख रहे थे। इतना प्रताप था हिरण्यकश्यप का। हाँ, वो लोग सोचे जैसे आजकल के लोग जिसकी जीत हो जाती है उसके से जय जयकार करते हैं, देवता लोग बहुत चलाक हैं। तो देवताओं ने कहा कि अगर भगवान जीत जाएंगे तो हम लोग उतर जाएंगे, भगवान की जय जयकार करेंगे, स्तुति करेंगे, नहीं जीतेंगे तो ठीक है, नहीं तो मार डालेगा। तो देवता इस प्रकार से चलाकी में थे। भगवान ने इसको खिलाते खिलाते इसकी देवढ़ी के ऊपर ले गए भगवान, न घर में न बाहर, घर भी नहीं मरे बाहर भी नहीं मरे, तो इसलिए ऐसी इसे खिलते खिलते भगवान इसकी देवढ़ी पर ले गए। रात में मतलब दिन में, इसलिए लेट कर रहे थे कि न रात हो न दिन हो, संध्या बेला में, गोधूली बेला में उस समय भगवान ने उसको उठा के पटक लिया अपने पलथी पर और उसके वक्षस्थल को चीर दिया और उसके अतड़ियों की माला बना के पहन लिए। उस समय भगवान के तेज को देख करके सब लोग डर रहे थे, देवता लोग भी स्तुति कर रहे थे लेकिन नजदीक आने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी, सब सोचते कौन किसको भेजा जाए किसको भेजा जाए। तो सब देवताओं ने राय किया कि लक्ष्मी जी को भेजना चाहिए कि उनकी पत्नी है, उनके ऊपर क्रोधित नहीं होंगे, उनकी गुस्सा भी उतर जाएगी। तो सब लोग राय करके बोले लक्ष्मी जी को कि लक्ष्मी जी आप जाइए, भगवान का इतना उग्र रूप देख करके किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है, कैसे इनको मनाया जाए। तो लक्ष्मी ने कहा ना ना बाबा, मैं तो नहीं जा सकती हूं क्योंकि ऐसा रूप तो आज तक मैंने देखा ही नहीं और ये मेरे से नहीं होगा। देवता लोग सोचने आप क्या करना चाहिए, तो देवताओं ने कहा कि भगवान भक्त वत्सल है, भक्तों को बहुत लाड़ प्यार करते हैं, ये प्रहलाद महाराज को भेजने से शायद भगवान ठंडे हो जाएंगे। भगवान की आंखें एकदम लाल लाल थी, जीभ निकाले हुए और रक्त से रंजित उनका पूरा मुख था, उनकी दाढ़ी बाल सब रक्त से भीगे हुए थे। भयंकर चेहरा देख करके सब परेशान हो गए। तब भक्त प्रहलाद के पास गए, बोले माला लीजिए, आप भगवान को डालिए, आपसे ठंडे हो जाएंगे भगवान। तो भक्त प्रहलाद माला लेकर के गए, भगवान के गले में डाले। भगवान उठा करके प्रहलाद को जैसे गाय अपने बछड़े को चाटती है ऐसे चाटने लगे। तो भगवान का क्रोध धीरे धीरे ठंडा होने लगा और रूप में भी परिवर्तन होने लगा। तब देवता लोग भी उतर के स्तुति करने लगे। तो कहने का मतलब यह है कि जो भक्ति है वो निस्वार्थ होनी चाहिए। प्रहलाद महाराज का कोई स्वार्थ नहीं था कि कुछ मार भी देगा तो मुझे, उनको कोई भय ही नहीं था। निस्वार्थ भक्ति होनी चाहिए। यही पयोव्रत के लिए कश्यप जी बता रहे थे अपनी पत्नी को, तुम व्रत करना कर रही करना चाहती हो लेकिन तुम्हारे अंदर स्वार्थ है, तुम गृहस्थ नहीं हो, गृहमेदी हो। कश्यप जी ये बताना चाहते थे गृहमेदी और गृहस्थ में क्या अंतर होता है। गृह में जिसकी आसक्ति हो उससे गृहमेदी कहते हैं, और सांसारिक वस्तुओं में आसक्ति हो, प्रॉपर्टी में हो, पुत्र इत्यादि में हो, तो वो लोग पयोव्रत नहीं कर सकते। इसलिए कश्यप जी ने कहा कि निर्जला होकर के, दूध पर आश्रित होकर के 12 दिन का पयोव्रत आप करिए, उसमें भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान प्रसन्न होकर के दर्शन दिया और भगवान ने यह भी कहा कि प्रश्नी प्रश्नी और कौन थे, सुतपा सुतपा और प्रश्नी के टाइम भी मैंने दर्शन दिया था और आपको भी दर्शन दिया, लेकिन भगवान ने पहले ही दर्शन दे दिया उनको, अदिति को। लेकिन कश्यप जी की जब तपस्या पूरी हुई और भगवान को अपने हृदय में उतारा तो उसके बाद अदिति के गर्भ में भगवान को डाला। लेकिन उसके पहले दर्शन दे चुके थे अदिति को, उनकी तपस्या से भगवान खुश हो गए थे। तो हमें कोई भी व्रत करना चाहिए तो भगवान कृष्ण की प्रसन्नता, जैसे प्रभुपाद जी ने व्रत उठाया तो पयोव्रत से कम नहीं है, ऊपर ही है। प्रभुपाद जी ने जो पूजा पाठ की पद्धति रखा है तो पयोव्रत से कम नहीं है। दिन भर भगवान की पूजा हो रही है, दिन भर ऑफरिंग हो रही है, दिन भर उनका सेवा हो रही है। तो हमेशा भगवान के भक्ति में भक्त लोग लगे हुए हैं, तो वह पयोव्रत ही है भगवान की प्रसन्नता के लिए। जो कार्यक्रम प्रभुपाद जी करवा रहे हैं सब भगवान की खुशी के लिए कर रहे हैं, ये पर्सनल व्यक्ति की खुशी के लिए नहीं कर रहे हैं, अपनी खुशी के लिए भी नहीं कर रहे हैं, भगवान की खुशी के लिए। तो जो व्रत भगवान की खुशी के लिए किया जाता है वो पयोव्रत से कम नहीं होता है, ये कश्यप जी बताना चाहते हैं। तो अदिति माता के इच्छा की पूर्ति हुई और फिर से देवताओं को अपना स्थान मिला। इंद्रादि अपने अपने आसन पर बैठे, ये पयोव्रत की महिमा है। तो हम यहाँ पे विराम करते हैं, कोई गलती हुई हो तो क्षमा कीजिए। बहुत वरिष्ठ भक्त हनुमान जी वगैरह बैठे हुए हैं, तो कोई कमिट वगैरह हो तो हनुमान जी करिए, और तमाल प्रभु ऐसे ऐसे महान भक्त बैठे हैं तो क्षमा कीजिएगा, मैं बहुत बार भागवतम क्लास नहीं देता हूँ। प्रभु जी राधिका कन्हाई प्रभु ने कहा, हमने कहा चलिए बैठते हैं, भगवान साहस देते हैं बोलने का, भगवान ही सब कुछ है, हमारे में क्या है, हम थोड़ी योग्य हूँ कि व्यास आसन पर बैठूं। व्यास आसन की महिमा बहुत बड़ी है। तो कोई कमिट हो तो हनुमान जी को माइक दीजिए।
हरे कृष्ण। जब बलि महाराज संकल्प देने जा रहे थे, उस समय जो शुक्राचार्य है वो झाड़ी के जो तोटे होता है ना, उसके अंदर जाके मेढक का रूप लेके अंदर बैठे, तो वो पानी नीचे नहीं गिर रहा था तो संकल्प पूरा नहीं हो रहा था। तब उनके पास स्ट्रा होता घास कड़क
कुश
ग्रास, तो वामन बालक के रूप में आए थे, तो उनके पास जो कुश था कुश ग्रास उन्होंने अंदर घुसाड़ा तो उनका एक आंख फट गई। इससे ये प्रमाणित होता है हमें कुछ सेवा नहीं करना है, अलग बात रही। अगर कोई भक्त सेवा कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उनके सेवा में रुकावट डालने से भारी पनिशमेंट आ जाती है। ये पॉइंट समझ में आया है? हाँ। अब दूसरा है, जो प्रभु के सेवा में अवरोध करे, प्रहलाद महाराज ने पिता का त्याग किया हिरण्यकश्यपु का, और भरत महाराज ने माता कैकेयी का त्याग किया, और विभीषण ने अपने भाई रावण का त्याग किया, और बलि महाराज ने अपने गुरु शुक्राचार्य का त्याग किया। तो प्रभु के भक्ति में कोई भी अवरोध डाले, उनका त्याग करने से कोई नुकसान नहीं है, प्रभु प्रसन्न हो जाए तो सब काम पूरा हो जाए।
हरि बोल, हनुमान प्रभु की जय। कथा का निचोड़ बता दिया आपने।
हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे आपने शुरू में बताया है बलि महाराज के संबंध में कि बलि महाराज जो है मर चुके थे, शरीर छोड़ चुके थे, लेकिन जिस शरीर से आत्मा निकल चुका होता है उस शरीर में आत्मा तो केवल भगवान ला सकते हैं, लेकिन शुक्राचार्य जी कैसे जिंदा कर दिए उनको?
क्या बोले? तो उनके पास तप से लाया उन्होंने, उनके पास तप था, अपने तपोबल से उन्होंने सबको जिंदा कर दिया। शुक्राचार्य ने अपने तपोबल से किया था। ये तो शुक्राचार्य और कोई मामूली थोड़ी थे, राक्षसों के गुरु थे, तो वो भी भगवान के प्रतिनिधि ही हैं। भगवान का अरेंजमेंट है, भगवान ने उनको रखा है, बृहस्पति को रखा है देवताओं के लिए, भगवान का अरेंजमेंट है।
हरे कृष्ण हरी बोल हरे कृष्ण। एक पतिव्रता नारी में और एक तपस्वी ब्राह्मण में अपार शक्ति होती है, तो शुक्राचार्य जी भी तपस्वी हैं। जैसे सत्यवान को सावित्री ने अपने तपोबल से है ना यमलोक से अपने पति को लौटा दिया, तो शुक्राचार्य जी मृत संजीवनी विद्या जानते थे, शिव जी से प्राप्त किए थे। तो मृत संजीवनी विद्या ऐसी विद्या है कि मरे हुए को आदमी जिला देता है, तो बलि महाराज को जिला दिए, शिव जी का आशीर्वाद था शुक्राचार्य जी के ऊपर, इसलिए उसको उनको जिला दिए। यही बात है। हरे कृष्ण
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की, राधा राज बिहारी भगवान की, गौर निताई भगवान की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की बोल। प्रेमानंदे हरि।